आन्या एक टक अन्वे को देख रही थी। दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे को कह दी थी। अन्वे खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। जैसे ही आन्या खामोश हुई, अन्वे ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। कितना बेचैन था वो आन्या का सवाल सुनकर। अब कहीं वो उसे खो न दे। उसने अपनी सारी बेचैनी, सारी तड़प शांत करने के लिए आन्या को अपने सीने से लगा लिया था। आन्या की भी दिल की बेचैनी अब कुछ कम होने लगी थी। दोनों के दिल सामान्य से तेज धड़क रहे थे। एक दूसरे को खो देने का डर उन्होंने महसूस किया था। अब वे उस डर को खत्म कर रहे थे। चेहरे पर से दर्द और बेचैनी के भावों की जगह सुकून ने ले ली थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे के सीने से लगे रहे। फिर अन्वे ने उसे खुद से अलग किया और उसके गाल को प्यार से छूकर कहा, भूल जाओ कि कभी तुम्हें ये सब पता चला था। मेरे लिए तुम आज भी वही आम सी लड़की हो जो बहुत खास है मेरे लिए, और यही सच है। बाकी किसी सच का मेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं। उसकी बात सुनकर आन्या के लबों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। अन्वे खुद खड़ा हुआ, फिर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, बहुत रात हो गई है, सुबह होने ही वाली है। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं, वरना अगर किसी ने देख लिया तो फिर कहेंगे कि दुल्हन शादी के दिन घर से भाग गई। अन्वे हल्का सा मुस्कुराया। वहीं आन्या ने उसे घूरते हुए कहा, मैं क्यों भागने लगी भला? मुझे तो तुम्ही से शादी करनी है। तो मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें वापस अपने घर जाना होगा, वो भी किसी के जागने से पहले। वैसे तुम यहाँ आई कैसे इतनी देर रात को? जूली आई थी छोड़ने, तुम्हारे आने के बाद गई थी वो यहाँ से, आन्या ने सहजता से जवाब दिया। अन्वे ने अब उसको अपनी बाहों में उठा लिया। आन्या ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अन्वे ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो मुस्कुरा कर बोला, हक है अब मुझे। आज तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ, जहाँ बस तुम आज के लिए हो। उसके बाद तुम्हें हमेशा यूं ही मेरे पास, मेरे करीब रहना है। आदत डाल लो अब। उसकी बात सुनकर आन्या के लबों पर मुस्कान ठहर गई। उसने अन्वे की गर्दन में अपनी बाहों को लपेट दिया। अगले ही पल अन्वे उसे अपनी बाहों में उठाए हवा से बातें करते हुए उसके घर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही मिनटों में वे दोनों आन्या के घर के बाहर खड़े थे। अन्वे ने उसे नीचे उतारा और प्यार से उसके माथे को चूम लिया, फिर उसे अपना ध्यान रखने का कहकर वापस चला गया। अब दोनों के ही दिल शांत थे। सुबह से शादी की तैयारियों और रस्मों में शाम कब हुई किसी को पता ही नहीं चला। दोनों घरों में खूब चहल पहल थी। अन्वे की तरफ से वैम्पायर बारात में शामिल होने आए थे। गाजे बाजों और ढोल नगाड़ों, आतिशबाजियों के साथ बारात रवाना हुई। घोड़ी पर बैठे अन्वे के लबों पर हल्की सी मुस्कान फैली हुई थी और बेचैन आंखों में आन्या के दीदार का इंतजार था। सभी नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल भी आन्या की तरफ से था और अजीत जी की मदद कर रहा था। जूली, सिमरन, आरती तीनों आन्या के कमरे में थे, जहां अब आन्या तैयार होकर बैठी थी। इंतजार था तो अन्वे को देखने का। कुछ एक घंटे बाद बारात उनके घर के पास पहुंची। शहनाई और बाजे की आवाज सुनकर सब लड़कियां जाकर खिड़की से चिपक गईं। कुछ देर की मेहनत के बाद उन्हें अन्वे का चेहरा नजर आया। उसको देखते ही सिमरन के लबों पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने आन्या की तरफ घूमते हुए मुस्कुराकर कहा, यार आन्या, आज तो अन्वे कमाल लग रहा था, और तो और मुस्कुरा भी रहा है। हाय, कितना स्टनिंग लग रहा है वो, उसकी कातिलाना मुस्कान। उफ, दिल कर रहा है बस देखते ही जाऊं। तुम भी आ जाओ, देखो तो सही कितना हैंडसम लग रहा है तुम्हारा दुल्हा। उसकी बात सुनकर आन्या की भी दिल किया अन्वे को देखने का। जैसे ही सिमरन चुप हुई, आरती उछलते हुए आन्या के पास आ गई और चहकते हुए बोली, यार आन्या, इतना हॉट बंदा है तुझे कहाँ से मिल गया? ये तो इस दुनिया का लगता ही नहीं, कितना तेज है इसके चेहरे पर। हाय, मैं तो फिदा हो गई जीजू पर। उसकी बात सुनकर आन्या की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने मन ही मन कहा, सच में इंसानी दुनिया से नहीं है वो, पर जो भी है बस मेरा है। ये कहते हुए वो अपनी ही बात पर शर्मा गई। सिमरन उसको भी ले गई अन्वे को दिखाने के लिए, पर वो जब तक वहां पहुंची बारात आगे बढ़ चुकी थी, तो वो देख नहीं पाई। उसका उदास चेहरा देखकर जूली ने मुस्कुरा कर कहा, आप इतनी उदास क्यों हो गई? आज आपकी शादी के बाद तो आप उन्हें जितना चाहे देख सकती हैं। देखी नहीं, और भी बहुत कुछ कर सकती हैं, सिमरन ने शरारती लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर पहले तो आन्या उसको आंखें बड़ी बड़ी करके देखती ही रह गई। फिर जैसे ही उसको उसका मतलब समझ आया, उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो उठा। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। उसकी शक्ल देखकर बाकी सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। वहां छेड़खानी और मजाक चल रहा था। शादी के लिए घर के सामने वाले पार्क में ही टेंट लगाया गया था। मजबूरी में ही सही, पर कावेरी जी ने हमारे दुल्हे राजा मतलब अन्वे का स्वागत किया। बारात का भी स्वागत किया गया।
कुछ देर बाद आन्या को वहां लाया गया। आन्या धीमे कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ रही थी जहां अन्वय खड़ा एकटक उसे ही देख रहा था। आन्या को पहले भी शादी के लाल जोड़े में बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार देख चुका था, पर आज जो कशिश उसके चेहरे में थी, चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिला हुआ था। लबों पर हल्की सी मुस्कान फैली हुई थी और आंखों में आज अलग ही चमक थी। इतनी प्यारी लग रही थी वो कि अन्वय अपनी पलकें भी नहीं झपक पा रहा था। आन्या भी नजरें बचाते हुए बीच बीच में उसे देख ले रही थी। सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानी, उस पर मरून दुपट्टा और उसी कलर का चूड़ीदार, सर पर सहरा, लबों पर कातिलाना मुस्कान। सच में आज वो बेहद दिलफरेब लग रहा था। आन्या की निगाहें बार बार उसे देखने के लालच में उसकी तरफ उठ जा रही थी। आन्या स्टेज के पास पहुंची तो अन्वय ने आगे आकर उसे संभाल कर स्टेज पर चढ़ाया। कुछ देर बाद वरमाला हुई दोनों की। सहर्ष एक दूसरे को वरमाला पहनाकर उन्होंने उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया। कुछ देर फोटो सेशन चला, उसके बाद दोनों को मंडप पर लाया गया। मंत्रों के बीच पहले कन्यादान, फिर एक एक करके शादी की सभी रस्में संपन्न होने लगी। सुबह की पहली किरण ने आकाश में अपना प्रकाश फैलाया। इसके साथ ही पंडित जी ने शादी के संपन्न होने की घोषणा की। कुछ देर बाद विदाई की घड़ी आई, पर आन्या की आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। घर परिवार से दूर जाने का दुख तो तब होता जब उसके लिए ये घर घर होता, यहाँ उसे प्यार मिला होता। हाँ, जब दोनों ने उसकी मम्मी की तस्वीर के आगे खड़े होकर आशीर्वाद लिया था, तब जरूर उसकी आंखें नम थीं। आन्या जाते हुए अजीत जी या कावेरी जी के गले तक नहीं मिली और उसकी ये बेरुखी अजीत जी का दिल कचोट गई, आंखों में आंसू भर आए। आन्या अजय के गले मिली तो दोनों भाई बहन रोने लगे। जैसे तैसे विदाई हुई। माधुरी जी ने आन्या का गृह प्रवेश करवाया। उसके बाद रस्मों और रिश्तेदारों के बीच दिन कब कटा किसी को पता ही नहीं चला। दिन भर में दोनों को न मिलने का मौका मिला न ही बात करने का। रस्मों के बाद आन्या मेहमानों से घिरी हुई थी। रात हुई तो अनामिका जी अन्वय के कमरे में लेकर चली आईं, फिर उसे समझाकर बाहर निकल गईं। अन्वय का जैसा सख्त नेचर था, किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे हंसी ठिठोली करने की। वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला, उसके साथ ही अंदर से आती भीनी भीनी सी खुशबू ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने सामने देखा तो हैरान रह गया। उसके कमरे का नजारा ही बदला हुआ था। धीमी सी रोशनी थी जो वहां जल रहे खुशबूदार कैंडल से आ रही थी। गुलाब के फूलों से पूरे कमरे को सजाया गया था। सब बहुत खूबसूरत लग रहा था और पलंग पर बिछी गुलाब की पंखुड़ियों के बीच खुद में सिमटी हुई आन्या तो आज कहर ढा रही थी। धीमी धीमी सी रोशनी में उसका चांद सा चेहरा अपनी अलग ही चमक बिखेर रहा था वहां।
अन्वय ने मुड़कर दरवाजा बंद किया, फिर उसकी तरफ बढ़ गया। दोनों के ही दिलों में अजीब सी हलचल मची हुई थी। इस बेकरारी और बेचैनी का अंत शायद उन्हें एक दूसरे की बाहों में समा जाने के बाद ही मिल सकता था। अन्वय उसके पास आ गया और उसे बेड पर से खड़ा करते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, देखना चाहो थी? आन्या ने पलके उठाकर उसे देखा और झट से हाँ में सर हिला दिया। अन्वय की मुस्कान बड़ी हो गई, उसने उसका हाथ थाम लिया। कुछ ही देर बाद ले झील किनारे खड़े थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ आज खुशी से झूम रहे थे। पूरी जमीन रंग बिरंगे फूलों से ढकी हुई थी जिनकी खुशबू मदहोश करने को काफी थी। झील किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। झरने के पानी में आकाश में चमकते सैकड़ों सितारों का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। ऐसा मानो जैसे आकाश धरती पर उतर आया हो। आकाश में चमकते चांद और वहां मौजूद जुगनुओं की हल्की हल्की रोशनी में वो जगह चमक रही थी। यहां से वहां उड़ते जुगनू उस मनोहर दृश्य को और भी सुंदर बना रहे थे। आन्या के लबों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और आंखें खुशी से चमक उठी। वो नजरें घुमाते हुए सब देख रही थी। वो नजारा आंखों के साथ साथ दिल को भी सुकून देने वाला था। फिर आन्या को ये सब बहुत पसंद था तो वो बहुत खुश लग रही थी। अन्वय कुछ देर तक बस आन्या को देखता रहा। उसके चेहरे पर यही खुशी देखने के लिए उसने इतना कुछ किया था। अचानक ही अन्वय ने उसकी कमर पर अपनी बाहों का पहरा बनाते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। आन्या की मुस्कान बड़ी हो गई। अन्वय ने उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिका दी और उसके कान के पास अपने लबों को ले जाते हुए धीमी आवाज में बोला, कैसा लगा सरप्राइज? बेहद खूबसूरत। पता है मुझे, हमेशा से ये अंधेरा, जुगनू, चांद सितारे बहुत पसंद थे। आन्या ने उस खूबसूरत नज़ारे में अपनी आंखों से निहारते हुए मुस्कुराकर कहा। अन्वय ने भी खुशी से दमकते उसके चेहरे को प्यार से निहारते हुए जवाब दिया, पता है, बताया था तुमने एक बार। वो तो बहुत पहले बताया था, तुम्हें आज भी याद है?
उसकी बात सुनकर आन्या की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। अन्वे ने उसका रिएक्शन देखा और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुमसे जुड़ी कोई बात मैं कभी नहीं भूलता, तुम्हारी कही हर बात याद है मुझे। अच्छा, क्या क्या याद है, ज़रा मुझे भी तो पता चले। आन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी। आन्या का सवाल सुनकर अन्वय ने फिर से मुस्कुराकर जवाब दिया, सब कुछ याद है तुम्हारे बारे में, पर अभी नहीं बताऊंगा। आज की रात बहुत ख़ास है हमारे लिए और इस खूबसूरत रात को मैं उन बातों को दोहराने में बर्बाद नहीं करना चाहता। अच्छा, ऐसी क्या ख़ास बात है आज की रात में जो ये रात आपके लिए बहुत ख़ास है? आज की रात हमारे मिलन की रात है। ये चांद, सितारे, ये जुगनू सब गवाह बनेंगे हमारे मिलन के। आज हम दो से एक हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मैं और तुम से हम बन जाएंगे और ये होगी हमारी दीवानगी की कहानी। अन्वय ने ये कहते हुए हौले से उसके कान के पास चूम लिया था। आन्या उसके लबों के स्पर्श से उसकी बाहों में मचल उठी, रोम रोम कंपायमान हो गया, दिल जोरों से धड़कने लगा।